ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सुरक्षित कारोबार प्रथम संशोधन विधेयक 2081 प्रतिनिधि सभा से पारित। चालू आर्थिक वर्ष के 6 महीने में काकड़भिट्ठा नाका से 14,56,00,00,000 रूपये के कृषि उत्पादों का किया गया निर्यात। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका में आयात किए जाने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने सुरक्षित कारोबार प्रथम संशोधन विधेयक 2081 को पारित किया है। उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु पौडेल द्वारा सभा समक्ष प्रस्तुत सुरक्षित कारोबार प्रथम संशोधन विधेयक 2081 सर्वसम्मति से पारित किया गया। ये जानकारी सभामुख देवराज किमिरे ने दी। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2080/81 पेश किया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक 29 कते मंगलवार दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने मीडिया काउंसिल विधेयक 2080 पारित किया। बैठक में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग द्वारा प्रस्तुत मीडिया काउंसिल विधेयक 2080 का प्रस्ताव सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया था। आज की बैठक में विधायन संबंधी विधेयक 2080 के संबंध में प्रतिनिधि सभा से प्राप्त संदेश सभा को बताया गया और उसे टेबल किया गया। इससे पूर्व राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सांसदों ने समसामयिक विषयों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक फागुन 4 गते रविवार दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टेल ने किसी के दबाव या प्रभाव में आए बिना अपराध और अपराधी को बड़ा या छोटा न मानते हुए काम करने का अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग से आग्रह किया। आयोग के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पोर्टेल ने कहा कि भ्रष्टाचार की प्रकृति और स्वरूप में बदलाव आ रहा है। ऐसे में अनुसंधान और अभियोजन प्रक्रिया को भी आधुनिक बनाने की जरूरत है। राष्ट्रपति पोर्टेल ने कहा कि सत्ता शक्ति और धन प्राप्ति के अनावश्यक मोह ने प्रक्रिया पद्धति और प्रणाली का दुरुपयोग कर लोगों को भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त किया है। सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास और उपयोग के साथ भ्रष्टाचार के तरीकों और प्रवृत्तियों में भी जटिलता बढ़ी है। राष्ट्रपति पोर्टेल ने यह कहा कि भ्रष्टाचार से संबंधित विधेयकों को लंबे समय तक अटकाने के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और इस पर उन्होंने संबंधित पक्षों का ध्यान आकृष्ट भी किया। उन्होंने कहा कि सुशासन सामाजिक न्याय और समृद्धि की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए सभी प्रकार के भ्रष्टाचार को जांच के दायरे में लाना होगा। कार्यक्रम में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राय ने कहा कि आयोग अपने दायित्वों का पूरी तरह से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और आयोग के काम को प्रभावी बनाने के लिए सभी की सहभागिता आवश्यक है। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेशों के राष्ट्रीय सभा से पारित होने पर आशंका जताई है। आज जनकपुर विमानस्थल पर पत्रकारों के साथ बातचीत में अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि संसद के शुरू होने से महज 6 दिन पहले अध्यादेश लाकर सरकार ने गलत रास्ता चुना है। उन्होंने बताया कि माओवादी का फागुन 12 गते से शुरू होने जा रहा जनजागरण अभियान भाषण और सभा पर ही केंद्रित नहीं होगा बल्कि बुद्धिजीवियों नागरिक समाज के अगुओं पत्रकारों और आम जनता के साथ साथ प्रत्यक्ष संवाद का कार्यक्रम है। आज ही अध्यक्ष प्रचंड ने महोत्तरी के बर्दिवास स्थित आधारशिला स्थापना के 22वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम को भी संबोधित किया। बता दें कि विक्रम संवत 2059 माघ 25 गते तत्कालीन नेकपा एकता केंद्र में आबद्ध गिरिराजमणि पोखरियाल लगायत नेताओं द्वारा शहीद परिवारों और पार्टी के पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं के आश्रय स्थल के रूप में स्थापित आधारशिला में 16 परिवार सामूहिक रूप में रह रहे हैं। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि सत्ता गठबंधन दल नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले के बीच किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं है। आज कैलाली की धनगढ़ी में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान गृहमंत्री लेखक ने कहा कि सरकार अर्थतंत्र में सुधार और सुशासन बहाल करने के काम में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि गैर सरकारी संस्था द्वारा खर्च की जाने वाली रकम को राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में लाने के लिए सरकार ने अध्ययन शुरू कर दिया है और इसके लिए माथहत के निकायों को परिपत्र किया गया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबु राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपालकै पूर्वी नाका काकड़ भिट्ठा से चालू आर्थिक वर्ष के 6 महीनों में 14,56,63,00,000 रूपये मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया है। प्लांट क्वारंटाइन तथा कीटनाशक प्रबंधन केंद्र क्वारंटाइन कार्यालय के सूचना अधिकारी चंद्रेश्वर ठाकुर के अनुसार निर्यात होने वाले मुख्य उत्पादों में इलायची, चाय, प्लाई व बेनियर, अदरक, अमली सोल आदि शामिल हैं। 6 महीनों में सबसे अधिक चाय का निर्यात हुआ है, जिसका मूल्य 6,82,00,000,000 रूपये है। इसके अलावा इलायची 4,22,60,00,000, प्लाई और वेनियर 1,91,13,00,000 रूपये मूल्य के निर्यात किए गए हैं। इसी अवधि में काकड़भिट्ठा नाका से 1,96,67,50,000 रूपये मूल्य के कृषि उत्पादों का आयात भी किया गया है। आयात होने वाले मुख्य उत्पादों में मड़ुआ, दाल, दलहन, चावल, ताजी सब्जियां, ताजे फल, लहसुन, आलू, मक्का, पशुचारा आदि शामिल हैं। काठमांडू की बूढ़ा नीलकंठ नगरपालिका 3 स्थित एक घर में ऑनलाइन जुआ खिलाने के आरोप में पुलिस ने 23 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस कार्यालय काठमांडू के प्रवक्ता एसपी अपील राज बोहरा ने बताया कि कल रात से आज सुबह तक चले ऑपरेशन में 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 88 मोबाइल फोन, 10 लैपटॉप और 81,000 रूपये नकद बरामद किए गए। स्थानीय दुर्जी लामा के 2 मंजिला घर में ऑनलाइन जुआ चलाने की स्थिति में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि उन पर जुए के आरोप में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। बागलों की इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था में रकम बचत करने वाले पीड़ितों को मेल मिलाप के आधार पर रकम वापस की जा रही है। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष देव कुमार नेपाली को विपक्षी बताकर याचिका दर्ज करने वाले 547 बचतकर्ताओं के मेल मिलाप करने के बाद रकम उन्हें वापस करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। अब तक 1,32,00,000 रूपये वापस किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने कहा कि सांसदों, मंत्रिमंडल के सदस्यों और कर्मचारियों की संख्या घटाने के हिसाब से संविधान का संशोधन होना चाहिए। आज जीपी कोयराला फाउंडेशन द्वारा भक्तपुर में आयोजित गोष्ठी में स्वास्थ्य मंत्री पौडेल ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करने के हिसाब से संविधान का संशोधन होना चाहिए। राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस को भव्यता के साथ मनाने के लिए संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय संबद्ध निकाय मार्फत किए जाने वाले कार्यक्रम और जिम्मेदारी तय किए गए हैं। संचार मंत्रालय की सचिव राधिका अर्याल के संयोजकत्व में आज हुई प्रचार प्रसार उपसमिति की बैठक ने प्रजातंत्र दिवस 2081 को भव्यता के साथ संपन्न करने के लिए मंत्रालय अंतर्गत के निकायों की जिम्मेदारी तय की गई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में आयात किए जाने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा करेंगे। ट्रंप के इस कदम का असर सबसे ज्यादा कनाडा पर पड़ेगा। दरअसल कनाडा और मेक्सिको स्टील के व्यापार के मामले में अमेरिका के सबसे बड़े पार्टनर हैं। अमेरिका में एल्यूमिनियम भेजने वाला सबसे बड़ा सप्लायर कनाडा है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन से स्टील आयात पर 25% और एल्यूमिनियम आयात पर 10% टैक्स लगाया था, मगर एक साल बाद अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको से ये टैरिफ हटा दिए थे, जबकि यूरोपियन यूनियन पर आयात कर 2021 तक लागू रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा, अगर कोई देश उनके ऊपर टैक्स लगाएगा तो वे भी उन पर टैक्स लगाएंगे। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो किन देशों की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें रविवार को पत्रकारों से अपने विमान में कही, जब वे फ्लोरिडा से न्यू ऑरलियंस जा रहे थे। पाकिस्तान में सुरक्षा बलों ने 7 आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। सेना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 2 अलग-अलग ऑपरेशन में इन आतंकियों को मार गिराया। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस आईएसपीआर ने एक बयान में कहा, 8 और 9 फरवरी की रात को सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की कथित मौजूदगी पर डेरा इस्माइल खान जिले के मद्दी में आईबीओ ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकाने को निशाना बनाया। इसमें 3 आतंकियों की जान गई है और 2 अन्य घायल हैं। उत्तरी वजीरिस्तान जिले के मीर अली इलाके में एक अलग अभियान चलाया गया। यहां सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया। 3 अन्य घायल हैं। सेना की मीडिया शाखा ने कहा कि अन्य आतंकवादियों को खत्म करने के लिए सफाई अभियान शुरू किया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुरक्षित कारोबार प्रथम संशोधन विधेयक 2081 प्रतिनिधि सभा से पारित। चालू आर्थिक वर्ष के 6 महीने में काकड़भिट्ठा नाका से 14 अरब 56 करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों का किया गया निर्यात। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका में आयात किए जाने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।